नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर सुभाष, हिंदी विभाग, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र से। आप सुन रहे हैं हिंदी के महान साहित्यकार, कथाकार श्री सुदर्शन जी से पद्म सिंह शर्मा कमलेश की एक मुलाकात। इस मुलाकात में आप सुनेंगे श्री सुदर्शन के जीवन के बारे में, उनके साहित्य लेखन की प्रक्रिया के बारे में। प्रस्तुत है पद्म सिंह शर्मा कमलेश का हिंदी के साहित्यकार सुदर्शन से एक मुलाकात। बंबई का जीवन अत्यंत व्यस्त है। वहां पर यदि आप किसी आदमी से मिलना चाहें और जो समय निश्चित हुआ है उस पर न पहुंच सकें, तो समझ लीजिए कि आपका काम नहीं बन सकता। एक भी ट्रेन छूट गई तो कम से कम आध घंटे का फर्क पड़ जाता है। मेरी घड़ी ने जब मुझे धोखा दिया और मैं 8 बजे चरनी रोड स्टेशन पहुंचा, तो मन में सोचा कि अब सुदर्शन जी से भेंट ना होगी, क्योंकि मैंने 8 बजे उनके घर पहुंचने का निश्चय किया था। लेकिन घर से निकल पड़ा था, इसलिए गाड़ी पकड़कर 9:45 बजे माहिम से सुदर्शन जी के निवास सिल्वरटन जा पहुंचा। 3-4 मिनट तक मैं चुपचाप बैठा रहा। मन में देर से आने के कारण लज्जित था। घड़ी का कारण बताकर जब मैं सफाई देने लगा तो वे बोले, आपका इंतजार कर रहा था, सुबह जाना तो कहीं नहीं था। फिर भी दिए हुए समय पर मुलाकात न होने से मुझे भी बेचैनी थी, लेकिन अब आप आ ही गए हैं, कोई बात नहीं, बंबई में ऐसा होना असंभव भी नहीं है। यह कहकर उन्होंने अन्य साहित्यकारों से हुई मेरी मुलाकातों के संबंध में पूछा। मैंने सबके नाम बताए। एक तो वैसे ही मुझे देर हो गई थी, दूसरे इधर उधर की बातों में हम बहे जा रहे थे। यह देखकर मैंने विचार किया कि अब अपना काम शुरू करना चाहिए। इस विचार का आना था कि मैंने उनसे पूछा, आपका बाल्यकाल किन परिस्थितियों में बीता और आपके कलाकार के निर्माण में कहां तक सहायता पहुंचाई? सुदर्शन जी बिना झिझक और संकोच के कहने लगे, बचपन मेरा गरीबी में बीता है। पिताजी मामूली आदमी थे। पढ़ाई के दौरान मैं ट्यूशन करके काम चलाता था। इतना कहकर वे कुछ रुक कर बोले, मैं घटना आपके जीवन के संबंध में सुनाता हूँ, उससे आपको मेरी परिस्थिति का ज्ञान हो जाएगा। मेरी स्वीकृति सूचक मुद्रा देखकर उन्होंने कहना शुरू किया, मैं 6ठे दर्जे में था। उस समय आर्य कुमार सभा का सेक्रेटरी था। उत्साह की कमी न थी, खूब काम करता था, बड़ी आर्य समाज में भी जाता था। उसके सेक्रेटरी एक मुंशी थे। मैं अदालती आदमियों को बेईमान समझता था। एक दिन उनकी बैठक में मैंने उनके संबंध में ऐसी बातें कह दी जो ठीक तो थी पर कहनी नहीं चाहिए थी। उस आदमी को मेरी बात से बड़ा दुख हुआ और वह मेरे घर आकर बोला, तुम कहते हो मैं बेईमान हूँ, आखिर कोई ना कोई काम करना ही होता है, अपनी बीवी बच्चों का पेट तो भरना है, फिर अदालत की नौकरी क्यों बुरी है? उसकी इस बात को सुनकर मैंने कहा, धर्म के मामले में बीवी बच्चों का ख्याल नहीं किया जा सकता, उस समय तो सब कुछ कुर्बान कर देना पड़ता है। मेरा यह उत्तर सुनकर वह चला गया। उस समय मैं यह भूल गया कि मुझसे उम्र में बड़ा एक आदमी मेरे घर आया है और मुझे उसका सत्कार करना है। यहां तक कि मैंने उसे बैठने तक के लिए भी नहीं कहा। उसी समय की बात है, उर्दू का एक अखबार था मारतंड, संपादक थे शिवरतन लाल बर्मन। वह अखबार उस सेक्रेटरी के पास आता था। डाकखाने में उसके भीतर मैंने उसका नाम रख देखा तो मुझे भी लगा कि मेरा भी नाम छपना चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से उसके लिए 8 आने जुटाकर भेजे। अखबार तो आया पर उसमें नाम न था। यह तब न जानता था कि ग्राहकों की लिस्ट जब तैयार होती है तभी नाम छपता है। बड़ा क्रोध आया। और वह तब तक आता रहा जब तक मेरा नाम भी उसकी ग्राहक सूची में ना गया। जब अपना नाम छपा हुआ देखा तो मैं गर्व से फूल गया और उसको दिखाने गया। उसने कहा, अरे यह क्या तारीफ की बात है, इसमें तो कोई भी आठ आने वाला अपना नाम छपा सकता है, कोई अपनी चीज लिखो तब तो कोई बात भी हो। मैं चुपचाप चला आया। आकर केसर की क्यारी के नाम से कुछ चुटकुले संग्रह करके मार्तंड को भेज दिए। वे छप भी गए और उनके साथ मेरा नाम भी। उसे जब मैंने सेक्रेटरी को दिखाया तो वह बोला, इसमें तुम्हारा क्या है, दूसरों की चीज तुमने संग्रह कर दी है, अपनी अकल तो इसमें है ही नहीं। इसके बाद मैंने कुछ दिलचस्प कहानियां और उनसे सबक शीर्षक से एक लेख लिखा। इस लेख में जीवन में कुछ काम आने की प्रेरणा थी। इस लेख को इंतिखाब लाजवाब में छपाया था, तब मैं 10-10.5 वर्ष का था। इस काम से 1 रुपया पारिश्रमिक भी मिला। यह लेख इतना अच्छा था कि मेरे हेडमास्टर ने स्कूल के लड़कों के बीच मुझे बुलाकर इसे पढ़ा था और पढ़कर पूरी तरह रोए थे। उस समय मुझे लगा कि मेरे भीतर वह शक्ति है कि मैं किसी को रुला दूं और किसी को हंसा दूं। मुझे अपनी कलम पर भरोसा हो गया। इस लेख को जब मैंने उसे दिखाया तो वह मान गया और उसने कहा, अब मैं तुम्हें लेखक मान सकता हूं। तब तो आपकी साहित्य सृजन की प्रेरणा का मूल स्रोत इन्हीं सज्जन को कहा जा सकता है। मैंने कहा, अवश्य। उन्होंने कहा, उसके कारण ही मैं लेखक बना, लेकिन आरंभ से मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मैं ऐसी कोई चीज न लिखूं जिससे कि लोगों की रुचि विकृत हो, कुछ विचार जागृत हों और लोगों को प्रेरणा मिले, यही मेरा लक्ष्य है। बुरी चीज का वर्णन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई अपनी ओर खींचती है। जब वे यह कह रहे थे तब मैंने उनसे पूछा, ऐसे विश्वास के साथ तो आपको आरंभ में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि एक गरीब स्वावलंबी लेखक के लिए ऐसा आदर्श बड़ा कष्टप्रद होता है। इस प्रश्न को सुनकर उनकी आंखें गर्व से चमक उठी और वे बोले, मैंने गरीबी को कभी लानत नहीं समझा, उसके ऊपर अपने आदर्श को महत्ता दी है। इसके लिए अपनी नौकरी छोड़ने में कभी आनाकानी नहीं की। जब मैं आर्य समाज के उपदेशक के पद पर कार्य करता तब एक वकील के यहाँ खाना खाने गया था। उसने मुझे लक्ष्य करके उपदेशकों की बुराई की। मैंने तर्क बतर्क वकीलों की बुराई की। उसने नौकरी के संबंध में धमकी दी। मैंने फौरन इस्तीफा दे दिया। महात्मा हंसराज ने जब सुना तो मुझे बुलाया। उन दिनों मेरे व्याख्यानों की बड़ी धाक रहती थी। उन्होंने 100 रुपये मासिक पर मुझे आर्य गजट का संपादक बना दिया। तब मैं 18 वर्ष का था। मैं सबसे छोटी उम्र में संपादक बन गया था। मुझे अपने लिए आदर्श के लिए भूखों मरना पड़ा। एक बार मैंने 3 दिन फाका किया और 4थे दिन स्टेशन से एक आदमी का ट्रंक उठाकर पहुंचाया। तब 2 आने कमाए और उनसे पेट भरा। यह बात तब की है जब मैं काफी नाम कमा चुका था और प्रतिष्ठा भी पा चुका था। सुदर्शन जी के ये अनुभव सुनकर और उनका स्वाभिमान देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, पर मैं न चाहता था कि वे अधिक दर्द की बातें कहें। इसलिए मैंने उनसे कहा, कृपा करके यह बताइए कि किन किन देशी विदेशी लेखकों का आपके ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर सबसे अधिक प्रभाव मोपांसा का पड़ा। इप्सन के ड्रामे भी मुझे प्रिय रहे हैं और मैटरलिंग को भी मैंने पढ़ा है। एक और लेखक है जिसका मैं भक्त हूँ, वह है सेनकाई विस। यह पोलिश, इसकी क्वाट वाडिस मास्टरपीस है। रूसी लेखक टॉलस्टॉय की कला भी मुझे अच्छी लगती है। देशी लेखकों में प्रेमचंद का प्रभाव मुझ पर सबसे अधिक पड़ा है। उनकी कहानियाँ पढ़कर मुझे कहानी लिखने का शौक हुआ। उनसे कोई सबक नहीं लिया, मैंने हमेशा उन्हें गुरु माना। रामायण और महाभारत को भी मैंने पढ़ा है। भाषा की दृष्टि से मैं तुलसीदास का महत्व मानता हूँ। और उपनिषदों को इसलिए पढ़ता हूँ कि उनमें साहित्यिक खूबियाँ दिखाई देती हैं। यही हाल बाइबल का भी है, उसका मैंने गहरा अध्ययन किया है, उसमें भी साहित्यिक खूबियाँ हैं। मैंने 1914 में बाइबल का एक इम्तिहान भी पास किया था जिसमें मैं भारत भर में सेकंड रहा था। अपनी झरोखे नामक पुस्तक मैंने बाइबल की भाषा में ही लिखी है। मैंने आगे उनसे प्रश्न किया, आपको किस कृति को लिखकर सर्वाधिक संतोष हुआ? उनका उत्तर था, किसी कृति से मुझे संतोष नहीं हुआ, मेरी सर्वश्रेष्ठ कृति अभी आने को है। सृजन से पूर्व और सृजन के बाद आपकी मनस्थिति कैसी रहती है, मैंने पूछा। अर जाती है, उन्होंने बताया, परेशानी बढ़ती है, कुछ खटपट सी मचती है, क्या चीज है इसे जानने की बेचैनी होती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। लिखते समय प्रसन्नता होती है, लिखने के 8-10 दिन बाद असंतोष होता है। मेरा लिखने का समय 2-2.5 बजे दिन का होता है, अक्सर घर से बाहर चला जाता हूँ, अर्ज आते ही एकदम लिख डालता हूँ। एक बार मैं बनारस में ठहरा था, सुबह के 8 बजे थे, नहाने जा रहा था, सामने एक साइकिल और तांगे में टक्कर हो गई, एकदम प्लाट सूझा। मैं नहाने ना गया, बीच से लौट आया, कमरा बंद कर लिया। तब 9-10 बजे थे, लिखना शुरू किया और शाम के 5 बजे तक लिखता रहा। यह कहानी घोर पाप थी, सन 1925 की बात है। कहानी शुरू करना मुश्किल होता है, मुश्किल क्या एक समस्या होती है, कैसे शुरू किया जाए। शुरू होने पर कहानी अपने आप चलती रहती है, खत्म होना उसका काम है। प्लॉट जो सोचता हूँ बीच में ही बदल जाता है। कई प्लॉट वर्षों से दिमाग में हैं पर उनके लिए अर्ज नहीं आई। फिल्म स्टोरी छोड़कर मैंने कोई कहानी पूर्व संयोजित नहीं लिखी। कहानी में थीम शुरू की रहती है, केवल उसका रूप बदल जाता है। उसके बाद मैंने एक ऐसा प्रश्न किया जिसे एक प्रकार से नहीं करना चाहिए था, परंतु मैंने कई व्यक्तियों से उस संबंध में सुना था और मैं चाहता था कि उसका औचित्य अनौचित्य मुझे मालूम हो जाए, इसलिए साहस करके वह प्रश्न मैंने पूछ ही लिया। प्रश्न था, कहते हैं कि आपको बनाने में आपकी पत्नी का बड़ा हाथ है, यह कहां तक ठीक है? यह सही है, उन्होंने कहा, मेरे बनाने में उसका पूरा ही पूरा हाथ है। वह उस जमाने की पढ़ी लिखी औरत है जब पंजाब में तालीम कम थी। वह अत्यंत कष्ट सहिष्णु है, अपनी जरूरतों के लिए उसने कभी मुझसे नहीं कहा। मैंने शादी होने से 12 साल तक कोई साड़ी खरीदकर उसे नहीं दी, 13वें वर्ष में उसे साड़ी दे पाया। पर्दे के सवाल पर जब मैं घर से निकाला गया तब मैंने एक पैसा घर से नहीं लिया। उस समय उसने मुझसे कभी कोई ऐसी मांग न की जो मुझे तकलीफ पहुंचाती। 1000 के जेवर की अपेक्षा सदा उसकी मांग यही रहती कि मेरी कोई किताब छप कर आए। उसने मुझे सब प्रकार की सुविधा दी, घर के कामकाज से तो बिल्कुल मुक्ति दे दी, हाट बाजार का काम, दर्जी से कपड़े सिलाने का काम, घर के अन्य काम, गर्ज यह है कि सभी कामों से उसने मुझे मुक्त कर दिया। मैं अक्सर सवेरे जगकर लिखता था तो वह स्वयं भी जाग जाती थी और चरखा लेकर बैठ जाती थी, सर्दी में अंगीठी जला देती थी। मेरी हर चीज की प्रथम श्रोता वही होती थी। ई और शय की गलतियां मुझसे बराबर होती थी, उसे उसने ही ठीक किया। और सत्य तो यह है कि मैंने हिंदी इसलिए सीखी कि मैं पत्नी को चिट्ठी लिख सकूं। उसने बराबर मुझे प्रोत्साहन दिया। यदि मेरी चीजों की कटी आलोचना हुई तो उसने मुझसे यही कहा, तुम अपनी पसंद की चीज लिखो, यदि लोग उसे नहीं समझते तो कोई चिंता नहीं है। जब वे यह सब बातें कह रहे थे तब मैं उस तपस्विनी के लिए मन ही मन श्रद्धा भाव से प्रणाम कर रहा था जिसने हिंदी के इस यशस्वी कहानीकार का निर्माण किया। मैं सबसे अधिक आश्चर्याभिभूत हुआ उसकी उत्साहप्रद वाणी से, जिसमें उसने कलाकार को अपनी पसंद की चीज लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या साहित्य साधना से आपका जी कभी उबा है? यदि हाँ तो उसके क्या कारण रहे, मैंने अगला प्रश्न पूछा। उन्होंने बताया, मेरा जी दूसरे कामों से तो उबा है पर साहित्य साधना से कभी नहीं उबा। यहां तक कि यदि कहानी लिखने की अर्ज हुई है तो मैंने ऐसी ऐसी आवश्यक फिल्म की कहानियां छोड़कर उस कहानी को पूरा किया है जिनसे मुझे 10-15 हजार रुपये मिलने की उम्मीद थी। तो क्या आपकी दृष्टि से साहित्य उपजीवी होकर जिया जा सकता है? यदि लेखक जरूरियात ज़्यादा न बढ़ाए तो जी सकता है। और वैसे भी अब तो वक्त आ गया है कि जबकि हिंदी के लेखक की आजीविका लेखन से चल सकती है। सुदर्शन जी भी प्रेमचंद की भांति उर्दू से हिंदी में आए हैं। यह सोचकर मैंने जानना चाहा कि वे उर्दू से हिंदी में क्यों आए और पूछा, आप उर्दू के लेखक थे, वहां आपका नाम भी था, फिर क्या कारण है कि आप हिंदी में आ गए? उन्होंने कहा, बात यह है कि हिंदी के मासिक अच्छे थे, यह सोचकर मन ललचाया कि इसमें लिखो। पहले अनुवाद कराया और शुद्ध करके उसे हिंदी पत्रों में छपवाया। उसके बाद मैंने हिंदी में ही लिखना शुरू कर दिया। विश्वास यह था कि मैं आगे चलकर उर्दू लिपि न रहेगी क्योंकि वह अवैज्ञानिक लिपि है। आर्य समाज के प्रभाव ने भी हिंदी की ओर मेरा ध्यान मोड़ा क्योंकि स्वामी दयानंद ने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार किया था। इस प्रकार मैं उर्दू से हिंदी में आ गया और फिर यहीं का हो रहा। सिनेमा में सुदर्शन जी ने गीत संवाद लेखक के रूप में अच्छी ख्याति पाई है। सिकंदर, पृथ्वी बल्लभ आदि फिल्म इन्होंने देखी हैं, वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। वे बहुत दिन से सिनेमा में हैं। एक बार प्रेमचंद जी भी सिनेमा में गए थे परंतु वहां अधिक दिन न ठहर कर लौट आए थे। मैंने सुदर्शन जी से पूछा, क्या कारण है कि प्रेमचंद जी सिनेमा में ठहर न सके? उन्होंने बड़े संयत स्वर में कहा, मेरा ख्याल यह है कि प्रेमचंद जी ज्यादा उम्र के थे और इतने पक गए थे कि अपने को एडॉप्ट न कर सके। दूसरी बात यह है कि उनकी जिंदगी में ड्रामा न था, न ही उनकी कला में ड्रामा था जिससे वे ड्रामे के अनुकूल अपने को बना सकते। तीसरी बात यह है कि वे साधना के पक्के थे इसलिए समझौता न कर सके। चौथी बात यह है कि प्रेमचंद जी कवि न थे, उनमें यथार्थवादी तत्व अधिक था इसलिए वे यहाँ जम न सके। इसके विपरीत मेरे भीतर समझौता करने की आदत थी, मैंने कर लिया। प्रेमचंद जी ने शायद ड्रामे देखे भी कम थे जबकि मुझे जन्म देते समय मेरी माँ रामलीला देख रही थी। बचपन में मैंने रामलीला बहुत देखी थी, ड्रामे बहुत देखे थे। मुझे पैसे की प्रेमचंद की अपेक्षा अधिक जरूरत थी इसलिए मैंने कंप्रोमाइज कर लिया। यहीं उन्होंने प्रेमचंद जी के जीवन की उस घटना का भी जिक्र किया जो उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है और जिससे उनकी स्वाभिमानी आत्मा का दर्शन होता है। वह घटना है प्रेमचंद जी को विश्व कवि टैगोर द्वारा बुलाया जाना और उनका ना जाना। इसमें लोग अक्सर यह समझते हैं कि प्रेमचंद जी के पास जाने को किराया न था इसलिए न गए, पर सुदर्शन जी ने इसका दूसरा ही कारण बताया। उन्होंने कहा, यह गलत है कि प्रेमचंद जी रुपए के कारण टैगोर से मिलने नहीं गए। बात दूसरी थी और बहुत गंभीर थी। वे बंगालियों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे। सन 1934 में जब सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर थे तब रामानंद चट्टोपाध्याय ने हिंदी को कुलियों की भाषा कहा था। उन्हें यह भी अखरता था कि हिंदी के साहित्यिकों को प्रांतीय भाषा वाले भी कोई सम्मान नहीं देते। उनका कहना था कि हिंदी के प्रतिनिधि की हैसियत से टैगोर से मिलने जाना अनुचित है इसलिए वे मिलने नहीं गए। इसके साथ ही सुदर्शन जी ने यह भी बताया कि उनकी भाग्य चक्र फिल्म जब बंगला में धूप छा नाम से निकली तो प्रोड्यूसर को बड़ी गालियां सुननी पड़ी। उसके बाद कोई हिंदी फिल्म बंगला में अनुदित न हुई। यह सुनकर मुझे प्रेमचंद जी की महानता और उत्तरदायित्व का तो ज्ञान हुआ, साथ ही बंगला भाषा भाषियों की संकीर्णता पर भी दुख हुआ। हिंदी वालों ने अपने को वास्तव में नीचे गिराया है, दीन भावना उनमें बेहद है, इसे दूर करने की सख्त जरूरत है। मैं ये सोच रहा था और सुदर्शन जी कह रहे थे, सिनेमा में कल्पना का धनी लेखक सफल हो जाता है, उसे कवि अवश्य होना चाहिए, इसके साथ ही अपनी चीजों को रद्द करने का भी साहस होना चाहिए, क्योंकि सिनेमा की टेक्निक दृष्टि से नए लेखक को ट्रेंड होने में काफी समय लगता है। परिश्रमी होना तो बेहद जरूरी है, इसके साथ ही अभिमान और प्रतिष्ठा का मोह छोड़ देना चाहिए। भारी ख्यालात वाले लोगों की अपेक्षा चार आने वालों के लिए जो लिख सके वही सफल हो सकता है। भाषा गंगा जमुनी होनी ही चाहिए। जो भी लेखक सफल हुए हैं वे इसी प्रकार के रहे हैं। प्रदीप और मधोक के गीत काव्य की दृष्टि से चाहे कुछ ना हो, पर उनमें देहाती गीतों का जोश और ग्रामीण धुने हैं। भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र भी सफल रहे हैं, लेकिन सफलता का पथ वही है जो मैंने बताया है। इसी के साथ मैंने उनसे पूछा, क्या इस प्रकार साहित्यकार की हानि नहीं होती? औरों की बात जाने दीजिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, यदि आप सिनेमा में ना आए होते तो आप आज कितने ऊंचे होते? इस दृष्टि से सिनेमा ने आपकी कला को हानि जरूर पहुंचाई होगी। अवश्य, उन्होंने स्वीकृति सूचक स्वर में कहा, हानि अवश्य होती है, परंतु ये जो मजबूरियां हैं इनका कोई क्या करे। अब तो मेरा ख्याल यह हो गया है कि 40 के बाद लिखना चाहिए, छोटी उम्र में चीज अच्छी नहीं बनती। सोचना, अनुभव करना, कष्ट सहना, ये सब उम्र से ताल्लुक रखता है। अब तो जो कुछ मैं लिखूंगा वह मनी के लिए नहीं, क्योंकि अब मुझे भूखों मरने की जरूरत न पड़ेगी। अब आप क्या लिखेंगे? कम से कम 6 उपन्यास लिखने का विचार है। दूसरी चीज है बच्चों की किताबें लिखना। हिंदी में उम्र की दृष्टि से बच्चों के लिए किताबें नहीं हैं। इस अभाव को पूरा करने की लालसा है। मैं साधन जुटा रहा हूं, कश्मीर में बैठकर लिखूंगा। क्या आप सिनेमा में यह अनुभव नहीं करते कि आप साहित्य जगत से दूर हैं? और क्या आपको कभी इसके संबंध में दुख नहीं होता है? क्यों नहीं, मैं बराबर यह अनुभव करता हूं कि सिनेमा में व्यक्तित्व का ह्रास ही नहीं होता, वह बिक भी जाता है। यहां वैनिटी सफर करती है। साहित्यिक महत्व की रक्षा का मुझे बराबर ख्याल आता है। मगरमच्छ जो पानी के भीतर रहता है दिन में एक बार रेती में लौटने आता है। साहित्यकारों को भी कभी कभी सिनेमा से साहित्य में जाना चाहिए, यह मेरा स्पष्ट मत है, क्योंकि बुनियाद उनकी वही है, उसी के बल पर वे सिनेमा में हैं और उसे खोना बुद्धिमानी नहीं है। क्या आप हिंदी साहित्य के भविष्य के विषय में कुछ कहेंगे? भविष्य उज्ज्वल है, नए लेखकों में साधना और ईमानदारी भी काफी है। आवश्यकता इस बात की है कि पुराने नयों से सहयोग करें और नए पुरानों से सीखें। नया विचार हरेक अच्छा है, पर सिर के बल चलना अच्छा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ लिखा जाए वह जनता के समझाने के लिए लिखा जाए, नहीं तो परिश्रम व्यर्थ जाता है। जैसे बीज बोने से पहले जमीन देख ली जाती है, वैसे ही साहित्य लिखने से पहले उसका लक्ष्य समझ लेना चाहिए। आधुनिक लेखकों को इसे भली भांति समझना है। कविता तो हिंदी की आज उर्दू से भी नीची है। मेरी दृष्टि में लफ्जों की खूबसूरती ही कविता है, और वही हिंदी वालों के पास नहीं। तुलसी, सूर और गालिब की परंपरा को कायम रखने की जरूरत है। वे जब यह बता रहे थे तब दरवाजा खटक रहा था। 3-4 घंटे हो गए थे। सुदर्शन जी गत वर्ष से बीमार भी हैं। इतनी देर तक बैठा रहना भी बीमार की दृष्टि से ठीक न था। चलते चलते उनसे अंत में मैंने पूछा, क्या आप अपनी आत्मकथा लिखेंगे? हाँ, उन्होंने कहा, मैं एक पुस्तक लिखना चाहता हूँ जिसका नाम लाइफ एंड डेथ ऑफ एन आर्टिस्ट होगा। इसमें मैं अपने जीवन पर अधिक प्रकाश डालूंगा। सुदर्शन जी ने इस बातचीत के दौरान में लगभग 1 दर्जन चुटकुले और किस्से सुनाए होंगे। हर बात को वे उदाहरण देकर बताते थे, और उदाहरण कोई चुटकुला या किस्सा होता था। कभी भी उनके विचारों में उलझाव न था। मंजे हुए और सुलझे हुए ढंग से महादेवी जी के बाद सुदर्शन जी ही मुझे ऐसे व्यक्ति लगे जो गुड टॉकर कहे जा सकते हैं। सुदर्शन जी में नाटकीय ढंग का आधिक्य है। उनकी बातचीत दूसरे कमरे में बैठकर सुनी जाए तो ऐसी लगेगी मानो कोई अभिनेता संवाद बोल रहा है। हो सकता है यह उनको सिनेमा से मिलने वाली विरासत हो, पर यह उनकी विशेषता है और ऐसी विशेषता है जिस पर हमें गर्व है। हिंदी का यह लोकप्रिय कलाकार फिर हिंदी को अपनी कृतियों से भरे और सिनेमा के जाल से निकले, यही हमारी एकमात्र आकांक्षा है। दोस्तों, ये थी एक मुलाकात डॉक्टर पदम सिंह शर्मा कमलेश की हिंदी के कहानीकार सुदर्शन से। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आप इसे साझा कीजिए। मिलते हैं किसी और साहित्यकार के किसी और वार्ता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।